एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत 100 अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम हाजिर हैं। कबूल करें संज्ञा का नमस्कार। फिल्म और गैर फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और उनके विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों और दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटने वाला ये साप्ताहिक स्तंभ है हमारा रेडियो प्लेबैक इंडिया का। आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 1986 की फिल्म नाम का गीत चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। पंकज उधास और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। निर्माता राजेंद्र कुमार को पंकज उधास से इस फिल्म में ये आइटम गीत गवाने का ख्याल कैसे आया? पंकज उधास ने इस गीत को गाने का न्योता स्वीकारते हुए राजेंद्र कुमार से माफी क्यों मांगी? इस गीत की रिकॉर्डिंग करते समय संगीतकार लक्ष्मीकांत ने फिल्मी गीत की रिकॉर्डिंग तकनीक की कौन सी प्रचलित परंपरा को तोड़ा? सेवा का गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बावजूद इस गीत को फिल्म फेयर पुरस्कार क्यों नहीं मिल पाया? बीबीसी रेडियो की ओर से इस गीत को कैसे सम्मान मिला? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रही है रचिता देश पांडे। 72 वर्ष की उम्र में 26 फरवरी 2024 को अपनी अनंत यात्रा पर निकल पड़े मखमली आवाज के गजल सम्राट पंकज उधास और अपने पीछे छोड़ गए अपने गाए गीतों और गजलों का एक लंबा कारवां। फिल्म संगीत जगत में उनके गाए गीतों की संख्या भले कम हो, लेकिन जितने भी गाने उन्होंने फिल्मों के लिए गाए, उन सब की अपनी जगह पहचान है, अलग जगह है, अपनी लोकप्रियता है, अलग सम्मान है। और पंकज उधास के गाए फिल्मी गीतों की बात जब शुरू होती है, तब सबसे पहले जिस गीत का जिक्र होता है वह निसंदेह फिल्म नाम का वही मशहूर गीत है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। चलिए आज याद करते हैं पंकज उधास साहब को उनके गाए इस कालजयी गीत से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के जरिए। 1986 की फिल्म नाम में चिट्ठी आई है गीत को गाने का मौका पंकज उधास को उस समय मिला था जब वो बहुत संघर्ष करने के बाद मायूसी से घिर कर हार कर भारत से बाहर स्थानांतरित हो गए थे। जी हाँ, ये बात 70 के दशक की है। गायक बनने की ख्वाहिश में पंकज उधास बंबई में संघर्ष कर रहे थे। जगह जगह धक्के खाने के बाद उन्हें पहला मौका दिया था संगीत निर्देशिका उषा खन्ना ने। उषा जी ने 1972 की फिल्म कामना में पंकज उधास को ब्रेक दिया। जो पहला गाना उन्हें गाने को मिला उसे लिखा था नक्श लालपुरी ने और जिसके बोल थे, तुम कभी सामने आ जाओ तो पूछू तुमसे किस तरह दर्द मोहब्बत में जिया जाता है। ब्रेक तो मिल गया, गाना भी बाहर आ गया, मगर इस गीत से उनके सिंगिंग करियर को कुछ खास फायदा नहीं हुआ, या यू कहे कि उनकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उस दौर में दिग्गज गायकों का राज चल रहा था। किसी भी नए गायक के लिए जगह बनाना बेहद मुश्किल था। अगले 4 साल तक पंकज उधास को फिर से निर्माताओं और संगीतकारों के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। हालांकि तब तक उनके बड़े भाई मनहर उधास फिल्मों में गाना गाने लगे थे, लेकिन पंकज को इससे भी कोई फायदा नहीं मिला। चारों तरफ से निराश होने के बाद पंकज ने अपने भाई मनहर के साथ स्टेज शोज में गाना शुरू कर दिया और उसके कुछ समय के बाद ही वो हिंदुस्तान छोड़कर विदेश चले गए। यानी पंकज उधास बम्बई इंडस्ट्री से हार कर विदेश जा बसे। लेकिन गजलों की दुनिया में उनका नाम हो चुका था और उनके प्राइवेट एल्बम आने भी लगे और काफी लोकप्रिय भी होने लगे। 1985 में तो उन्हें बेस्ट गजल सिंगर ऑफ द ईयर का केएल सहगल अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। दोस्तों, कहते हैं ना कि हर बात का वक्त मुकर्रर होता है। पंकज उधास का भी हिंदी फिल्मों में गाने का वक्त आना अभी बाकी था। जब राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को लेकर फिल्म नाम की योजना बना रहे थे, तब उनका किसी वजह से विदेश जाना हुआ। और वहां उन्होंने एक स्टेज शो में पंकज उधास को गाते हुए सुना। पंकज उधास बंबई फिल्म जगत में भले सफल ना हुए हो, उनकी लोकप्रियता एक गजल गायक के रूप में देश में और विदेश में तब भी काफी हद तक बढ़ चुकी थी। उनकी इसी लोकप्रियता को देखकर राजेंद्र कुमार ने उनकी एक गजल या नज्म को अपनी फिल्म में रखने का मन बना लिया, क्योंकि फिल्म नाम का विषय वस्तु ही विदेश में बसने वाले भारतीयों से जुड़ा हुआ है और विदेशों में इस तरह के स्टेज शोज काफी लोकप्रिय हैं। इसलिए राजेंद्र कुमार ने ये सोचा कि वो अपनी फिल्म में पंकज उधास को विदेश के स्टेज शो में गाते हुए फिल्म में दिखाएंगे। बस फिर क्या था, राजेंद्र कुमार ने अपने असिस्टेंट को पंकज उधास से फोन पर बात करके एक मीटिंग तय करने को कहा। जब असिस्टेंट ने पंकज उधास को फोन करके बताया कि राजेंद्र कुमार साहब अपनी फिल्म में उन्हें एक स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर लाना चाहते हैं, तो उन्हें इस स्पेशल अपीयरेंस वाले सीन में कुछ दम नहीं दिखा। उन्होंने इस बात को, इस न्योते को खास तवज्जो नहीं दी, कोई जवाब ही नहीं दिया। वक्त गुजरता चला गया, राजेंद्र कुमार को पंकज उदास का कोई जवाब नहीं आया। एक दिन राजेंद्र कुमार ने इस बात का जिक्र, या यूं कहें कि कुछ हद तक शिकायत के तौर पर, बड़े भाई मनहर उदास से किया। तब मनहर ने छोटे भाई पंकज से बात की और उन्हें समझाया। मनहर के कहने पर भाई पंकज को समझ में आया कि उन्होंने राजेंद्र कुमार जैसे सीनियर फिल्मकार को जवाब ना देकर गलती की है। उन्होंने राजेंद्र कुमार से बात की, उनसे माफी मांगी और उनके ऑफर को स्वीकार भी किया। किस्मत देखिए कि पंकज उदास का यह स्पेशल अपीयरेंस वाला गाना वास्तव में उनके जीवन का एक स्पेशल गाना बनकर रह गया। फिल्म की पटकथा में चिट्ठी आई है वतन से गीत के लिए जगह बनाई गई, आनंद बख्शी साहब से दिल को छू लेने वाले बोलों की गुंजाइश रखी गई और बख्शी साहब राजेंद्र कुमार की उम्मीदों पर ना सिर्फ खरे उतरे, बल्कि राजेंद्र कुमार साहब को जिस स्तर के गीत की उम्मीद थी, बख्शी साहब ने उससे कई गुना अधिक उन्हें संतुष्ट किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पुरअसर धुन और पंकज उधास की मखमली आवाज में ढलकर एक मास्टरपीस की रचना हुई। इस गीत की रिकॉर्डिंग भी अजीबोगरीब तरीके से हुई। अपने एक साक्षात्कार में पंकज उधास ने बताया कि जब वे गीत की रिहर्सल के लिए स्टूडियो पहुंचे, तब लक्ष्मीकांत जी को एक ख्याल आया। उन्हें लगा कि हकीकत में पंकज उधास जिस तरह से बैठकर स्टेज शोज करते हैं, और इस फिल्म में भी उन पर ये गीत जिस तरह से बैठकर फिल्माया जाना है, तो क्यों ना गीत की रिकॉर्डिंग वो बैठकर ही करें। स्टूडियो में गायक खड़े होकर माइक पर गाते हैं, यही परंपरा शुरू से रही है और तकनीक भी। इसलिए लक्ष्मीकांत जी के ऐसे विचार से रिकॉर्डर सहित सभी लोग चौंक गए। सब ने तरह तरह की परेशानियों की बात की, लेकिन लक्ष्मीकांत जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने बकायदा स्टूडियो में चार टेबलों को जोड़कर उनके बैठने का ऊंचा स्टेज बनाया। अकाउस्टिक्स का ख्याल रखते हुए पंकज उधास के आराम से बैठने का बंदोबस्त किया गया। इस प्रकार बीच में पंकज उधास बैठे हैं और उनके चारों ओर सारे साजिंदे। लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि एक टेक में देखते हैं कि किस तरह की रिकॉर्डिंग होती है, फिर दूसरा टेक लेंगे। पहला टेक शुरू हुआ, पंकज उदास ने गाना पूरा किया, फिर उठकर बाहर आए ये पता करने कि कैसा रहा टेक, और वो सोच रहे थे कि ये तो रिहर्सल जैसा था, एक दो टेक तो और लगेंगे। पंकज उदास ने देखा कि सब उनकी तरफ आ रहे हैं, सबके चेहरे गंभीर हैं, सबकी आंखों में पानी है। लक्ष्मीकांत जी ने पंकज उदास को गले से लगा लिया। उन्होंने पंकज उदास से कहा कि पहला टेक ही इतना परफेक्ट हुआ है और पंकज उदास ने इतना पुरअसर गाया है कि अब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इस तरह से रिकॉर्डिंग पद्धति में बदलाव के बावजूद एक टेक में गाना ओके हो गया। और उस दिन जिस तरह रिकॉर्डिंग में मौजूद लोगों को इस गाने ने रुलाया था, जब ये गाना रिलीज हुआ तब दुनिया भर के भारतीयों को इस गाने ने रुलाया और आज भी रुलाता रहता है। इस गीत ने पंकज उदास को रातों रात स्टार बना दिया। जहां एक तरफ चिट्ठी आई है गीत को दुनिया के कोने कोने में बसे भारतीय मूलों के लोगों ने अपने दिलों में जगह दी, वहीं दूसरी तरफ ये पंकज उदास का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि 1986-87 में फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्राइक चलने की वजह से फिल्म फेयर पुरस्कारों का वितरण समारोह आयोजित नहीं हुआ और इन 2 सालों में कोई भी फिल्म फेयर पुरस्कार किसी कलाकार को नहीं दिया गया। अन्यथा इस गीत के लिए पंकज उधास को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म पुरस्कार मिलना निश्चित था। अन्यथा इस गीत के लिए पंकज उदास को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिलना निश्चित था। हम इस आधार पर यह कह सकते हैं कि अमीन सयानी द्वारा प्रस्तुत लोकप्रिय प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम सिबाका गीत माला में इस गीत ने अन्य सभी गीतों को पीछे पछाड़ते हुए उस वर्ष सर्वोच्च गीत का खिताब हासिल किया। इस दौड़ में शामिल थे मिस्टर इंडिया की हवा हवाई, नगीना का मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा, फिल्म ईमानदार का और इस दिल में क्या रखा है तथा सिंदूर फिल्म का पतझड़ सावन बसंत बहार जैसे लोकप्रिय गीत। लेकिन चिट्ठी आई है कि बोलो संगीत और गायकी के आगे कोई और गीत टिक ना सका। वैसे उस साल सिबाका गीत माला में फिल्म नाम का एक और गीत भी शामिल था। मोहम्मद अजीज की आवाज में अमीरों की शाम गरीबों के नाम गीत का वार्षिक कार्यक्रम में 8वां पायदान मिला था। मनहर उदास के जरिए पंकज उदास तक पहुंचने की वजह से राजेंद्र कुमार ने मनहर उदास को भी इस फिल्म में एक गीत गाने का मौका दिया था। मोहम्मद अजीज के साथ मनहर उदास का गाया वह युगल गीत था तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, जिसमें मनहर ने फिल्म के मुख्य नायक संजय दत्त का पार्श्व गायन किया। फिल्म नाम में दो नायक और दो नायिकाएं थी। संजय दत्त के लिए मनहर उदास की आवाज ली गई तो कुमार गौरव के लिए चुनी गई मोहम्मद अजीज की आवाज। दो नायिकाओं में अमृता सिंह के लिए लता मंगेशकर की आवाज ली गई तो पूनम ढिल्लो के लिए कविता कृष्णमूर्ति की। लेकिन चिट्ठी आई है ने लोकप्रियता के जो झंडे गाड़े, इस फिल्म का कोई भी दूसरा गीत वह मुकाम हासिल नहीं कर पाया। आज भी लोग फिल्म नाम के नाम पर चिट्ठी आई है का ही सबसे पहले नाम लेते हैं। जब बीबीसी रेडियो ने दुनिया भर के सहस्राब्दी के श्रेष्ठ 100 गीतों की तालिका बनाई तब उसमें चिट्ठी आई है भी शामिल था। चिट्ठी आई है गीत के रिलीज होते ही पंकज उदास के पीछे फिल्म जगत के निर्माताओं और संगीतकारों की कतार लग गई और 1988-89 में उनके गाए बहुत से फिल्मी गीत बाहर आए। इन फिल्मों में शामिल है तमाचा, गुनाहों का फैसला, दयावान, गंगा जमुना सरस्वती, हम इंतजार करेंगे, गोला बारूद, लाल दुपट्टा मलमल का और गवाही। 90 के दशक में भी पंकज उदास के गाए फिल्मी गीतों का सिलसिला जारी रहा। घायल, थानेदार, बाहर आने तक, साजन, अधर्म, बेटा, संगीत, जिगर, आजा सनम, दिल आशना है, फिर तेरी कहानी याद आई, बाजीगर, सलामी, मोहरा, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी। दोस्तों, फेहरिस्त बहुत लंबी है पंकज उदास के गाए हिट गीतों वाली फिल्मों की। आज भले पंकज उदास इस फानी दुनिया में ना हो, लेकिन उनके गाए ये लोकप्रिय गाने और गजलें श्रोताओं के दिल बहलाते रहेंगे और नए गायकों को गायकी की राह दिखाते रहेंगे। 80 के दशक में अगर चिट्ठी आई है गीत बना तो 90 के दशक में संदेशे आते हैं। दोनों गीतों के बोलों और भावों में बड़ी समानता है। दोनों ही गीतों के अंतरे नज्म के अंदाज में लिखे गए हैं, जिस वजह से उनकी लंबाई भी आम गीतों के अंतरों से अधिक है। दोनों गीतों के अंतरों में परिवारजनों से जुदाई के दर्द का सजीव चित्रण है। अगर दोनों गीतों में कोई फर्क है तो वह यह कि एक में बेटा विदेश में नौकरी कर रहा है तो दूसरे में बेटा सरहद पर एक फौजी की हैसियत से तैनात है। दोस्तों, आज बस इतना ही। उम्मीद है आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। स्वर्गीय पंकज उदास साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के एक गीत 100 अफसाने के इस अंक से हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।
एक गीत 100 अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।